एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास रचना की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसने गांव की कहानी को ना जैसे राष्ट्रीय कहानी का दर्जा दिलवा दिया।
हाँ,
हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के पहले और शायद सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यास मैला आंचल की।
बिल्कुल, मैला आंचल।
1954 में जब ये छपा था तो कहते हैं कि जैसे हिंदी उपन्यास की दुनिया में एक ताजी हवा का झोंका आ गया था।
हाँ, और ताजी हवा शायद इसलिए भी क्योंकि रेणु जी, जो खुद बिहार के पूर्णिया जिले के वहीं एक गांव के थे, उन्होंने शहर के चश्मे से गांव को नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो जैसे गांव की धड़कन, उसकी बोली, वहां की धूल, वहां का दर्द, सब कुछ, मतलब सब कुछ जैसे कागज पर उतार दिया हो।
अच्छा,
यही है जिसे साहित्य की भाषा में आंचलिकता कहते हैं ना।
हाँ, आंचलिकता,
जब कोई अंचल, कोई खास इलाका ही कहानी का मुख्य पात्र बन जाए।
हाँ, और ये सिर्फ एक मतलब जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, रेणु जी ने उस दौर के गांव को पकड़ा जो आजादी के ठीक, अब कह सकती हैं, मुहाने पर खड़ा था।
बिल्कुल, 1940 और 50 का दशक।
हाँ, एक तरफ पुरानी मान्यताएं थीं, जाति पाति का वो बुरा जाल था, बीमारियां थीं, गरीबी थी, और दूसरी तरफ देखिए आजादी की उम्मीदें थीं, नए सपने थे, राजनीतिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी।
और रेणु जी तो खुद स्वतंत्रता सेनानी भी रहे।
हाँ,
बाद में जेपी आंदोलन से भी जुड़े।
हाँ, हाँ,
तो वो जो उनका अपना अनुभव था वो उनकी लेखनी में एकदम साफ झलकता है।
तो चलिए फिर सीधे चलते हैं बिहार के उस काल्पनिक गांव मेरीगंज।
मेरीगंज, हाँ,
नाम तो काल्पनिक है पर कहानी पढ़ते हुए लगता है कि एकदम असली है।
बिल्कुल, उपन्यास खुलता है और हम देखते हैं एक बहुत पिछड़ा हुआ सा गांव, जहां मलेरिया, कालाजार जैसी बीमारियां बिल्कुल आम बात है, जहां लोग डॉक्टर से ज्यादा शायद ओझा पर भरोसा करते हैं।
अच्छा,
और ये गांव भी ना कई टोलों में बटा हुआ है। राजपूत टोली है, यादव टोली है, कायस्थ टोली है, मतलब हर किसी की अपनी एक दुनिया, अपने झगड़े, अपनी बातें।
और इसी माहौल में, इसी गांव में एक दिन शहर से एक नौजवान डॉक्टर आता है, डॉक्टर प्रशांत कुमार।
डॉक्टर प्रशांत, हाँ,
आदर्शों से भरा हुआ, गरीबों की सेवा करने का जज्बा लिए हुए।
हाँ हाँ,
और उसका एक मकसद ये भी है कि वो मलेरिया और कालाजार पर शोध करे।
हाँ,
तो उसके आने से क्या होता है, गांव से कैसे देखता है, क्या बदलता है?
देखिए, प्रशांत के लिए तो मेरीगंज एक एक शॉक जैसा है, एक झटका है। शहर का पढ़ा लिखा लड़का है वो, गांव की गंदगी देखता है, अंधविश्वास देखता है, जाति पाति।
हाँ,
तो शुरू में थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा हताश भी। उसे लगता है कि अरे, मैं यहाँ विज्ञान लेकर आया हूँ और ये लोग भूत प्रेत में ही उलझे हुए हैं।
और गांव वाले
भी उसे शक की नजर से ही देखते हैं कि ये विलायती इलाज करने वाला कौन आ गया।
अच्छा, विलायती इलाज।
हाँ, लेकिन धीरे 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 प्रशांत सिर्फ एक बाहरी डॉक्टर नहीं रहता, वो गांव के दुख दर्द को समझने लगता है, लोगों से जुड़ने लगता है।
और मुझे लगता है यही उपन्यास का असली संघर्ष शुरू होता है ना।
बिल्कुल,
प्रशांत का वो आधुनिक वैज्ञानिक नजरिया और गांव की वो सदियों पुरानी सोच, उसके बीच का टकराव।
हाँ,
और ये सवाल भी तो उठता है कि क्या बदलाव ऊपर से थोपा जा सकता है?
सही,
क्या प्रशांत की डॉक्टरी गांव के उन मर्जों का इलाज कर सकती है जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं?
बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। प्रशांत को भी ये एहसास होता है, वो समझता है कि बीमारी सिर्फ जिस्म में नहीं है, वो समाज में है। वो देखता है कि कैसे जमींदार विश्वनाथ प्रसाद और मठ का जो महंत है वो गांव पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, कैसे भोली भाली जनता को ठगा जा रहा है। तो प्रशांत सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करना चाहता।
हाँ,
वो इस सामाजिक बीमारी का इलाज खोजना चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
गांव की अपनी राजनीति है, अपने समीकरण है, बहुत जटिल है सब।
और इसी गांव की एक और बहुत अहम किरदार है कमली।
हाँ, कमली,
जमींदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है वो, पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी परंपराओं और सामाजिक बंधनों में जकड़ी ही सी लगती है। उसकी कहानी क्या कहती है हमें?
कमली वो एक तरह से उस गांव की दबी हुई आत्मा जैसी है।
वो एक अजीब सी बीमारी से गुजर रही है जो शायद तन की कम मन की जरा लगती है।
अच्छा, भारी दुनिया से कटी हुई सी, अपने ही घर में जैसे कैद हो। प्रशांत के आने से उसकी जिंदगी में भी एक उम्मीद सी जगती है।
हाँ,
दोनों के बीच एक बहुत नाजुक सा रिश्ता पनपता है, और ये रिश्ता गांव की जाति और वर्ग की जो दीवारें हैं ना, उनको चुनौती देता है।
हाँ,
ये सिर्फ प्रेम का रिश्ता नहीं है, ये कमली के लिए अपनी पहचान खोजने, अपनी आवाज पाने का एक जरिया भी बनता है।
रेणु जी ने कमली के जरिए उस वक्त की औरत की जो घुटन थी, जो सपने थे, उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाया है।
बहुत मार्मिक चित्रण है।
तो एक तरफ प्रशांत और कमली की ये व्यक्तिगत कहानी चल रही है, और दूसरी तरफ गांव में राजनीतिक हवा भी तेज हो रही है।
आजादी नजदीक आ रही है।
बिल्कुल।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इसका गांव पर क्या असर पड़ता है?
गांव वाले जो अब तक अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में ही उलझे रहते थे, वो अचानक से इस राजनीति नाम की नई चीज से रूबरू होते हैं।
झंडे आते हैं, नारे लगते हैं, वोट की बात होती है, तो गांव में नए गुट बन जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस है, जिसमें बलदेव जैसे पुराने समर्पित गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आजादी के लिए जेल काटी है।
हाँ, बलदेव।
दूसरी तरफ है कालीचरण जैसे जोशीले नौजवान समाजवादी नेता।
अच्छा।
जो भूमिहीना और पिछड़ों के आवाज उठाते हैं, वो जमींदार और कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देते हैं।
यहाँ बलदेव का किरदार बहुत दिलचस्प लगता है मुझे। वो आजादी के सिपाही रहे, लेकिन आजादी मिलने के बाद क्या होता है उनके आदर्शों का?
बलदेव की कहानी असल में आजादी के बाद के मोहभंग की कहानी है।
मोहभंग?
हाँ। जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, अब उसी पार्टी की अंदरूनी राजनीति, वो गुटबाजी, सिद्धांतों से होता समझौता, ये सब देखकर उनका दिल टूटता है। वो उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का प्रतीक है जिन्हें लगा था कि स्वराज तो आया पर सुराज कहाँ है।
हाँ, ये बात तो बहुत सुनने में आती है।
शासक बदल गए पर गरीबों की हालत वैसी की वैसी है। गांव वाले कहते भी हैं उपन्यास में, गोरे साहब गए, भूरे साहब आ गए।
बिल्कुल। और इसी राजनीतिक खींचतान और आदर्शों के टकराव के बीच एक और किरदार है जो बिल्कुल अलग खड़ा दिखता है, बावनदास।
बावनदास, हाँ।
उसे कि वो उपन्यास की आत्मा कहा गया है।
बिल्कुल कहा गया है और सही कहा गया है। बावनदास दुबला पतला सा आदमी है, जैसे हवा में तैरता हुआ सा। वो साक्षात गांधीवादी आदर्श है, सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ सेवा। उसे ना तो पद का कोई लालच है ना पैसे का। वो बस गांव वाँव घूमता है, लोगों को सही राह दिखाने की कोशिश करता है। वो जैसे उस मैली होती दुनिया में पवित्रता का एक छोटा सा दिया है।
लेकिन क्या ये दिया उस आंधी में टिक पाता है? उपन्यास का एक सबसे दर्दनाक मोड़ शायद बावनदास से ही जुड़ा है।
नहीं टिक पाता, नहीं। आजादी के बाद जो भ्रष्टाचार पनपता है, खासकर वो कालाबाजारी, बावनदास उसके खिलाफ आवाज उठाता है। वो जैसे पाप की उस चलती हुई गाड़ी को अपने नन्हे हाथों से रोकने की कोशिश करता है और कुचल दिया जाता है। उसकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, वो जैसे उस भोले निश्चल गांधीवादी युग के ही मौत का प्रतीक है। रेणु यहाँ बहुत कड़वा सवाल उठाते हैं कि क्या इस नए तिकड़मी भारत में बावनदास जैसे लोगों के लिए कोई जगह बची भी है?
उपन्यास जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये सारी कहानियां, प्रशांत और कमली का वो नाजुक सा प्यार, बलदेव का मोहभंग, कालीचरण का संघर्ष, बावनदास की शहादत, गांव की अपनी जातिगत लड़ाइयां, खासकर राजपूतों और यादवों के बीच की तनातनी, मठ की साजिशें, ये सब आपस में जैसे गुत्ती चली जाती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
रेणु किसी एक सी ही पटरी पर नहीं चलते, वो पूरे गांव की जिंदगी का चित्र एक साथ दिखाते हैं।
हाँ, इसीलिए इसकी जो संरचना है वो थोड़ी अलग है। कोई सीधा सपाट कथानक नहीं मिलेगा आपको, बल्कि छोटे छोटे किस्से हैं, घटनाएं हैं, जो मिलकर मेरीगंज की तस्वीर को पूरा करते हैं।
अच्छा।
जैसे गांव की जिंदगी बहती है ना अलग अलग धाराओं में, वैसे ही कहानी भी बहती है। कभी हम प्रशांत के दवाखाने में होते हैं, कभी कमली के कमरे में, कभी बलदेव की बैठकों में, तो कभी कालीचरण के नारों के बीच।
और फिर आजादी मिलती है, लेकिन गांवों में खुशी के साथ साथ बंटवारे और दंगों की खबरें भी आती हैं।
हाँ।
उम्मीदें जैसे धूमिल होने लगती हैं। प्रशांत को भी झूठे केस में फंसा दिया जाता है।
एक वक्त लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है।
हाँ, वो दौर आता है।
लेकिन यही एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। जिन गाँव वालों ने शुरू में प्रशांत पर शक किया था ना, वही अब उसके लिए खड़े होते हैं, उसे बचाने के लिए आगे आते हैं।
अच्छा।
उसे जेल से छुड़ाया जाता है, वो गांव लौटता है, कमली से शादी करता है और शहर जाने की बजाय हमेशा के लिए मेरीगंज में ही रहकर काम करने का फैसला करता है।
लेकिन अंत कोई परीकथा जैसा नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
मेरीगंज का आंचल अब भी मैला है, समस्याएं खत्म नहीं हुई है।
सही कहा।
लेकिन प्रशांत और कमली का वो संकल्प, गाँव वालों का वो बदलता हुआ नजरिया, ये एक धीमी, मुश्किल पर यकीनी बदलाव की उम्मीद जरूर जगाता है।
हाँ, रेणु कोई आसान जवाब नहीं देते। वो जिंदगी की जो जटिलता है उसको जस का तस दिखाते हैं, कोई सरलीकरण नहीं।
और शायद यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है।
बिल्कुल,
ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये आजादी के बाद के भारत का आईना है।
एकदम सही, इसमें वो सारे विरोधाभास हैं जो हमारे समाज में थे और शायद आज भी हैं।
हाँ, जैसे
एक तरफ गहरी आस्था है तो दूसरी तरफ अंधविश्वास भी है, एक तरफ भाईचारा दिखता है तो दूसरी तरफ जाति का जहर भी घुला हुआ है, एक तरफ बदलाव की चाह है तो दूसरी तरफ परंपरा का बोझ भी है, सब कुछ एक साथ है।
इसमें स्वतंत्रता के मोहभंग का जो थीम है वो बहुत प्रबल है।
हाँ, बहुत ज्यादा।
कि आजादी के लिए जो आदर्श लड़े गए थे वो कहाँ खो गए, क्यों नई व्यवस्था भी उतनी शोषक नजर आने लगी, क्यों आम आदमी की जिंदगी नहीं बदली, ये सवाल ये तो आज भी उतने ही मौजू लगते हैं ना।
बिल्कुल, आज भी उतने ही जरूरी सवाल हैं ये।
और जाति, जाति का क्या?
जाति तो जैसे मेरीगंज की हवा में घुली हुई है, उपन्यास पढ़ते हुए लगता है कि वही सब कुछ तय कर रही है। राजनीतिक पार्टियां बदलती हैं, नारे बदलते हैं, पर जाति की पकड़ ढीली नहीं पड़ती,
बल्कि कई बार तो राजनीति उसे और मजबूत कर देती है।
हाँ बिल्कुल, रेणु ने इसे बिना किसी लाग लपेट के एकदम साफ साफ दिखाया है।
एक और टकराव है आधुनिकता बनाम परंपरा का।
हाँ, प्रशांत का विज्ञान और गांव का विश्वास।
लेकिन रेणु किसी एक को सही या गलत नहीं ठहराते, मुझे ऐसा लगा।
नहीं ठहराते, वो दिखाते हैं कि शायद दोनों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। प्रशांत को भी समझना पड़ता है कि सुधार सिर्फ दवा या कानून से नहीं होता, लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं, उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है।
हाँ, उपन्यास में एक जगह कहा भी गया है शायद कि सुधार का काम ऐसे नहीं होता जैसा कि ये शहरी लोग समझते हैं।
बिल्कुल, यही बात है। और इन सब के बीच, इतनी मुश्किलों के बीच भी रेणु का जो गहरा मानवतावाद है वो चमकता रहता है।
हाँ।
वो गरीबी दिखाते हैं, गंदगी दिखाते हैं, नाइंसाफी दिखाते हैं, पर अपने किरदारों को कभी छोटा नहीं बनाते। उनमें एक गजब की जीवटता है, जिंदगी की धड़कन है, छोटे छोटे पलों ने उनकी इंसानियत उभर कर आती है।
आंचल मैला जरूर है पर उसके नीचे धड़कता हुआ दिल साफ सुनाई देता है।
क्या बात कही। हाँ। बिल्कुल।
और रेणु जी की भाषा, उफ, वो भी तो कमाल की।
अरे भाषा तो अद्भुत है।
उन्होंने कोई किताबी हिंदी नहीं लिखी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने गांव की बोली, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका के शब्द, मुहावरे, लोकगीत,
हाँ,
सब हिंदी में ऐसे मिला दिए जैसे दूध में पानी मिल जाता है।
इससे भाषा एकदम सजीव हो उठती है ना, लगता है मेरीगंज में ही खड़े होकर सुन रहे हैं।
हाँ, वो भाषाई यथार्थवाद का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है हिंदी में।
और प्रतीकों का इस्तेमाल भी कितना सुंदर है।
हाँ, प्रतीक भी बहुत गहरे हैं।
शीशा की देख लीजिए, मैं रहा चल
जी,
ये सिर्फ कपड़े का मैल नहीं है।
नहीं,
ये नैतिकता का मैल है, व्यवस्था का मैल है, सपनों का मैला हो जाना है।
बिल्कुल, और गाँव की बीमारियाँ वो समाज की बीमारी का प्रतीक बन जाती हैं।
हाँ।
बावन दास का वो कमजोर सा शरीर वो गांधीवादी आदर्शों की नाजुकियत का प्रतीक बन जाता है।
हाँ, उपन्यास कुछ ऐसे वाक्य छोड़ जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
हाँ, कई जगह,
जैसे प्रशांत का वो सोचना
जी,
ये गांव एक मरीज है, नहीं हर गांव एक मरीज है, पूरा देश एक मरीज है।
हाँ, ये उसके मिशन को कितना बड़ा फलक दे देता है।
बिल्कुल।
या फिर बावनदास की मौत पर वो टिप्पणी कि एक पवित्र आत्मा की बलि चढ़ गई, नए युग ने उसे कुचल दिया, ये तो सीधे दिल पर चोट करती है, बताती है कि आदर्शों की राह कितनी कठिन है।
और प्यार के बारे में भी रेणु कितने यथार्थवादी हैं। वो कहते हैं आदमी का प्यार भी तो मैला ही होता है, साफ प्यार कहीं होता है।
हाँ, ये प्रशांत और कमली के रिश्ते की जटिलता और उन पर जो सामाजिक दबाव है उसको दिखाता है।
ये उपन्यास पाठकों पर बहुत गहरा असर छोड़ता है।
हाँ बिल्कुल,
हम किरदारों से जुड़ते हैं, उनकी हार पर दुखी होते हैं, उनकी जीत में कहीं ना कहीं उम्मीद देखते हैं।
ये हमें सिखाता है कि गांव की जिंदगी उतनी सरल नहीं है जितनी शायद हम शहरों में बैठकर सोच लेते हैं, उसमें बहुत गहरी जटिलताएं हैं, संघर्ष है।
ये हमारी शहरी सोच को चुनौती देता है कि समाज सुधार क्या है, प्रगति क्या है, इन सबके मायने क्या है।
हाँ।
क्या हम बाहर से जाकर किसी समाज को सुधार सकते हैं, या सच्ची सेवा के लिए पहले झुककर सीखना पड़ता है? नम्रता, धैर्य और जमीन से जुड़ने की जरूरत होती है।
मैला आंचल सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये भारतीय समाज और साहित्य का एक बहुत जरूरी दस्तावेज है।
बिल्कुल,
ये बताता है कि असली भारत शहरों में नहीं, शायद आज भी गांव में ही बसता है।
और ये भी कि बदलाव एक धीमी रोजमर्रा की लड़ाई है।
हाँ।
जो शायद सिर्फ नीतियों से नहीं आती बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले प्रशांत, कमली और शायद उन बदलते हुए गांव वालों जैसे लोगों के लगातार कोशिशों से आती है।
बिल्कुल सही, ये एक सतत प्रक्रिया है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकरत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।